ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राम सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज कुमार पाठक।
आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाने के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष अपने देश में 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम है, ऐसे लोग जिन्हें कहीं न कहीं अपने उपेक्षा का बोध होता है, अपने अधिकारों में कमी का बोध होता है, उन्हें हम मुख्य धारा में ला सकें, इसीलिए वैश्विक स्तर पर यह दिवस अलग अलग देशों में अपनी इच्छानुसार आवश्यकतानुसार मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा,
मैं माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आइसोलेशन में नहीं कंसोलिडेशन में आपकी रुचि रहनी चाहिए, आप कर ही रहे हो, इसकी गति बढ़ानी पड़ेगी। मित्रों, दुनिया बदल रही है, दुनिया में AI तेजी से बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग तेजी से बढ़ रहा है, इनोवेशन की नया डिसरप्शन आ रहा है। उस हिसाब से अगर हम खुद को 21st सेंचुरी की लालाइन करेंगे, तब जाके प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, डिग्री जितना महत्वपूर्ण है, हुनर उसे कई गुना ज्यादा महत्व है। हमें आपकी मदद चाहिए।
आज इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से इसी को समझना चाहेंगे कि हमारे संविधान में हमारे केंद्र और राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों के रूप में किन्हें चिन्हित किया है, उनके उन्नतीकरण के लिए क्या सब प्रयास किए जा रहे हैं, और यह जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी की ओर से अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राम सिंह जी को। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक से हमारा तात्पर्य क्या होता है और हम किन्हें भारतवर्ष में अल्पसंख्यक के रूप में गिना करते हैं।
जो अल्पसंख्यक है भारतवर्ष में, हमारा जो मंत्रालय बना है 2006 में बना है अल्पसंख्यक के लिए, तो इसमें जो 6 अल्पसंख्यक आते हैं मूलतः, जो हमारे नोटिफाइड है माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जैसे कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, पारसी और जैन है, तो इनके लिए जो ओवरऑल पॉलिसी करने हैं, प्लानिंग बनाने हैं, अलग अलग तरह के स्कीम बनाने हैं, कोऑर्डिनेशन इवेल्युएशन करना है उनका, और एक कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट प्रोग्राम करने हैं जिससे कि हमारे अल्पसंख्यक कम्युनिटीज का फायदा हो, इसके लिए मंत्रालय का गठन हुआ था। पहले जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री थी उसको अलग से 2006 में बनाया गया था, तो इसीलिए हमारा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया है। तो इसमें बेसिकली जो हम जो प्रोग्राम चलाते हैं उसमें 4 तरह के प्रोग्राम हैं। एक है एजुकेशन एम्पावरमेंट, जिसमें कि प्रधानमंत्री विकास है, पीएम विकास एजुकेशन कंपोनेंट है इसमें, और जैसे कि अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप वगैरह है, और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है जिसमें कि स्किलिंग और ट्रेनिंग कंपोनेंट है पीएम विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, ये एक मेजर प्रोग्राम है हमारे मंत्रालय का जिसमें प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं। और उसके अलावा जैसे स्पेशल नीड्स हैं, जैसे लीडरशिप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कंपोनेंट का, जियो पारसी का, हज का, और इससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास स्पेशल नीड्स के स्कीम्स हैं, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हमारे मंत्रालय के हैं जो कि हम लोग जो है जिनको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिनको चलाते हैं। तो आज जो माइनॉरिटी राइट्स डे है, तो सबसे पहले तो मैं सभी 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनको माइनॉरिटी राइट्स डे का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जो 18 दिसंबर को UN डिक्लेरेशन है जो राइट्स ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल इथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए शुरू हुआ था 1992 में, तो बहुत ही जरूरी ओकेजन है। इसके लिए हमारा जो है मंत्रालय हर साल, हमारे जो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज है वो जो है एक स्पेशल प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि हमारे मंत्री महोदय शामिल होते हैं। तो इसके लिए ये डिक्लेरेशन है जो कि बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है जो ग्लोबल डिस्कोर्स जो माइनॉरिटी राइट्स का होता है उसके लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान है फंडामेंटल राइट्स देता है सारे सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को, तो उनके अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनका जो वाइब्रेंट कल्चर है, रिलीजन है, लैंग्वेज है, वो को एग्जिस्ट करे बाकी सारी कम्युनिटीज के साथ। तो ये एक विकसित भारत का संकल्प जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारा जो प्रण है उसको जो है सारे सिटीजन्स के लिए है।
यहाँ पर हम समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आपने प्रधानमंत्री जन विकास कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी, तो अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय की ओर से इसके लक्षित लाभार्थी कौन हैं और उनको सामाजिक आर्थिक विकास के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी भागीदारी निभाने के लिए क्या सब सहयोग दिया जा रहा है, किस रूप में आपके मंत्रालय द्वारा यह संभव हो पा रहा है?
जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो माइनॉरिटीज एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए किया जाता है, ये 2008-09 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था हमारा जो कार्यक्रम। तो पहले इसका नाम था माइनॉरिटी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें कि मंत्रालय ने आइडेंटिफाई किए थे जो माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड ब्लॉक्स हैं और माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया। उनका जो क्राइटेरिया ये था कि 25% माइनॉरिटीज की होनी चाहिए कोई भी जो माइनॉरिटीज, उसके अलावा सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो थे उसमें उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेट, स्पेशली फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, लिटरेसी परसेंटेज वगैरह था, तो इन सब के लिए जो बेसलाइन सर्वे कराया गया था उस बेसिस पे जो है माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड ब्लॉक्स और माइनॉरिटी कंसेंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए थे। तो ये स्कीम है उस वक्त चली, तो उस वक्त जो है काफी अच्छी तरह से चलाई गई थी। उसके बाद स्कीम में काफी मॉडिफिकेशन हुए 2018-09-19 के बाद, उसमें ये पाया गया कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे की माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं, चाहे ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या के हिसाब से 25% ना हो, लेकिन काफी सारे माइनॉरिटी पॉकेट्स हैं जो कि इस जो विकास के जो चल रहा है उससे रह रहे हैं। तो गाइडलाइंस में चेंज किया गया कि इसमें 25% पॉपुलेशन 15 किलोमीटर के दायरे में जहां भी जो भी एरिया में है वहां पे ये विकास कार्यक्रम चलाए जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। तो इसमें जो हम लोग स्कीम्स लेते हैं वो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लेते हैं, जैसे स्कूल्स है, रेजिडेंशियल स्कूल्स है, एडिशनल बिल्डिंग्स है स्कूल्स वगैरह के लिए, और उसके अलावा जैसे गर्ल्स हॉस्टल है वो लेते हैं, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेजर कंपोनेंट है इसमें। हम लोग ये देखते हैं कि जो पीएचसी है, सीएससी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल भी काफी सारे जगहों पे हम लोग लेते हैं, और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल डेवलपमेंट है, ये हमारे जो है प्रायोरिटी है। उसके अलावा स्कीम जो है जो नॉन प्रायोरिटी एरियाज हैं या जो भी अदर एरियाज हैं जो कि वाटर सप्लाई है, सोलर पावर है या सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अलावा हम लोग जो है वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स सद्भाव मंडप लेते हैं, ये सारी स्कीम्स जो है ग्रास रूट लेवल से फॉर्मुलेट होके आती है। इसमें ब्लॉक लेवल से कमेटी जो है वीडियो के अंडर और जिसमें की लोकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे वो फॉर्मुलेट करके डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं। जिला स्तर पे इसको जो कि डीसी के अंडर जो है कमेटी बैठती है जिसमें की एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं, बाकी ऑफिशियल भी होते हैं, वो लोग प्रायोरिटी के हिसाब से स्कीम्स फॉर्मुलेट करते हैं, फिर वो स्टेट को भेजते हैं, स्टेट से चीफ सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी होती है, वो उनको स्क्रूटनाइज करके उसमें लाइन डिपार्टमेंट ऑफिसर का जो है एंडोर्समेंट वगैरह लेके कि किस तरह से वो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कैसे अच्छे से प्रोग्राम चलाए जाए, फिर उसको अप्रूव करके हम लोगों को भेजती है। 2019-20 के बाद इसको वेब पोर्टल पे ऑनलाइन किया गया है ताकि ये सारी स्कीम सब लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखे। उसके बाद सेंट्रल लेवल पे सेक्रेटरी के अंडर एक एम्पावर्ड कमेटी उसको अप्रूव करके हम यहाँ से स्कीम को अप्रूव, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सारा का सारा यहाँ से हम लोग करते हैं, और उसके बाद समय समय पे इस स्कीम्स का इवेल्यूशन इम्पैक्ट स्टडी होता है। 2021 में भी एक इम्पैक्ट स्टडी हुआ था, IIT ने किया था इसका। तो ये जो है सुचारू रूप से ये स्कीम चलाई जाती है और टाइम टाइम पे हम लोग जो है सारे वर्गों का इसमें फीडबैक लेते हैं और इस तरह से जो है एंश्योर करते हैं कि स्कीम जो है टारगेटेड बेनिफिशरीज तक पहुंचे।
श्रोताओं, कई महत्वपूर्ण बातें निकल के आई कि ये योजना जमीनी स्तर पर तैयार की जाती है, आप जो वहां के रहने वाले बाशिंदे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के, उनकी संख्या 25% के आसपास हो यह अपेक्षा रहती है, लेकिन कम भी हो और स्थानीय लोग चाहते हैं तो उनके कल्याण की योजनाएं चलाई जाती हैं, वहां से फिर ऊपर का क्रम बनता है और अंततः पहुंचता है कहां, हमने जाना केंद्र सरकार के पास। यहां स्पष्ट सा सवाल पूछना चाहेंगे कि यह योजना राज्य सरकार के सहयोग से चलाई जाती है या केंद्र सरकार की ओर से, जैसा आपने कहा कि हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2019-20 के बाद से इसमें गति आई है, तो किस रूप में यह निधि राज्यों तक या जमीन तक पहुंचती है उसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करें।
इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि ये स्कीम जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें कि 60% जो है 60% केंद्र सरकार की भागीदारी होती है और 40% जो है राज्य सरकार की। उसके अलावा जैसे कि हिली एरियाज हैं, हिली स्टेट्स हैं, हिमाचल उत्तराखंड हो गया और हमारे नॉर्थ ईस्ट है, उसके लिए 90% केंद्र सरकार का, 10% जो है स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे यूटीज जो विदाउट लेजिस्लेचर है उसमें 100% केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, तो और विद लेजिस्लेचर 60-40 का, तो ये योगदान रहता है सारी की सारी स्कीमों में। तो इस स्कीम के अंतर्गत मैं ये बताना चाहूंगा कि सारे जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज में ये स्कीम चलाई जा रही है और 2008-09 से लेकर अब तक जो यूनिट सेंक्शन हुए हैं 5,93,604 यूनिट हुए हैं इसमें। और सबका हम लोगों ने जितना भी जीआईएस मैपिंग किया गया है उसमें सारे के सारे यूनिट्स का, तो इतने सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स हुए हैं। और इसके अलावा जैसे ट्रेनिंग वगैरह, कंप्यूटर ट्रेनिंग वगैरह होती है, कोई स्किल डेवलपमेंट होता है, पहले पहले हुआ करता था इसमें, तो उस तरह की 5,00,000 और जो है कंपोनेंट्स टोटल हो चुके हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑलमोस्ट 11,00,000 यूनिट्स जो है इस स्कीम के बनते हैं। तो 11,00,000 यूनिट्स जो है इस स्कीम के हम लोग अलग अलग राज्यों में और केंद्र सरकार में इसका आवंटन हो चुका है 2008-09 से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड जो खर्चा है कुल मिला के 24,525 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं इस स्कीम में अब तक।
यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि आम लोग यदि मान लीजिए अल्पसंख्यक समाज के अंतर्गत हैं तो उन्हें क्या अपना कारोबार शुरू करने या उद्योग धंधों के लिए या विशेष तरह की उनकी कोई शैक्षिक आवश्यकता है या कह लें व्यक्तिगत जीवन की उनकी कोई आवश्यकता है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान है इन योजनाओं के अंतर्गत?
हमारे पास जो मंत्रालय से अटैच्ड एक नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फंडिंग कॉरपोरेशन है NMDFC, उसके जो एसोसिएटेड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हर एक राज्यों में यूनियन टेरिटरीज में है, तो वो फंडिंग करती है एजुकेशन लोन्स और एंटरप्रेन्योरशिप लोन्स के लिए। जो उसका एजुकेशन लोन कंपोनेंट है जो गरीब वर्ग के लिए है, 3% ब्याज दर पर वो एजुकेशन लोन देती है और 20,00,000 डोमेस्टिक फंड लोन के लिए अगर राष्ट्र स्तर पर इंडियन मेडिकल कॉलेज में किसी को एडमिशन लेनी है तो वो वहां पे ले सकता है। उसका जो खर्चा है वो बहुत ही कम है उस हिसाब से। और किसी को अगर फॉरेन स्टडी के लिए लोन लेना है तो 30,00,000 रुपए तक ले सकता है। तो उसमें दो तरह के लोन है जिसका की वो इनकम कैटेगरी के हिसाब से है। लो इनकम वालों के लिए Tier 1 में 3% ब्याज है और Tier 2 में जो है 8% ब्याज है। तो ये बहुत ही जो सॉफ्ट लोन जिसको बोलते हैं उस हिसाब से ये हमारे माइनॉरिटीज के लिए उपलब्ध हैं। और इस मामले में जो है हमारे NMDFC के ऑफिशियल्स जो है टाइम टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ जो है उनके पार्टनर्स हैं, चैनलाइजिंग पार्टनर्स बोलते हैं, उनके साथ मीटिंग करके माइक्रो फाइनेंसिंग करती है, क्रेडिट स्कीम्स हैं, इस तरह की अलग अलग स्कीम्स हैं। तो इसमें जो क्रेडिट लाइन 1 है तो उसके लिए बेनिफिट जो एनुअल इनकम होनी चाहिए 3,00,000 से कम, और क्रेडिट लाइन 2 होनी चाहिए जिसके लिए इनकम होनी चाहिए 8,00,000 से कम। तो ये दो लाइंस हैं वो अवेलेबल हैं और इस तरह से एक सॉफ्ट लोन दिया जाता है। और जो विमेन बेनिफिशरीज के लिए 2% अलग से कंसेशन है क्रेडिट लाइन 2 में, तो जिसमें कि 8% का जो लोन बोला है तो उसमें एक तो टर्म लोन स्कीम है जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वायबल इनकम जनरेशन वेंचर्स के लिए दी जाती है 20,00,000 और 30,00,000। एक एजुकेशन लोन स्कीम है जो कि टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए दिया जाता है 5 साल के लिए, जो कि 20,00,000 डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए, 30,00,000 जो है बाहर देश में पढ़ने के लिए। और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस स्कीम भी है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होता है उनके लिए दिया जाता है, जिसमें कि 1,00,000 रुपीज क्रेडिट लाइन 1 के लिए और 1.5,00,000 क्रेडिट लाइन 2 के लिए। तो उसमें जो है इंटरेस्ट रेट 7% और 10% है। फिर से जो है अगर विमेन ग्रुप्स हैं तो उनके लिए 2% और भी उसमें प्रावधान है, 2% एक्स्ट्रा कंसेशन। उसके अलावा विरासत स्कीम है जो कि टर्म लोन है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल, जो मशीन टूल्स और मशीनरी वगैरह खरीदने के लिए, और उसमें मैक्सिमम लोन 10,00,000 जो है क्रेडिट लाइन 1 और 2 के लिए। ये जो है 5% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और 1% और फीमेल आर्टिजन्स के लिए कंसेशन है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे जो नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्कीम्स है जो अपने आप में एक पाथ चेंजिंग स्कीम्स है, जिसमें कि ब्याज दर जो होती है मार्केट रेट से बहुत ही कम दर पे दिया जाता है और ये जगह जगह लोन मेला करते हैं। मंत्रालय ने इस बार डिसीजन लिया है कि एक्टिव रूप से लोन मेला चलाएगी हर जगह पे और हम लोग इसको एक्टिवली मॉनिटर करेंगे।
आपने बहुत सारी जानकारियां दी, उपयोगी जानकारियां, सार्थक जानकारियां। श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव राम सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज कुमार पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।